सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अता और उसकी नवाजिश को हम सोच ही नहीं सकते। ये है जिसकी बशारत देता है अपने बंदों को। ये स्पेशल बंदे हैं कौन से? अल्लदीना आमनू व आमिलु सोलिहात। प्लीज इसके ऊपर हमने फोकस करना है, अपने लिए भी और आपको भी। ये कहते हैं नंबर वन किस पे फोकस करना है? नंबर वन हमारा फोकस होगा ईमान के ऊपर, ईमान पे। मेरा ईमान कितना है, किस लेवल का है, कितना मजबूत है, मुझे अपने ईमान को बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए? क्योंकि देखें, जन्नत इज नॉट फ्री। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमा दी ना, ذلك الذي يبشر الله عباده। अल्लाह ताला बशारत देता है अपने उन बंदों को, सारों के लिए नहीं है ये, फ्री नहीं है, फ्री फॉर ऑल, जो मर्जी जन्नत लेता जाए, सारे ही चलो जन्नत में चढ़े जाओ, भेड़ चाल है, जिसने जो मर्जी किया हुआ घुसता जाए। नहीं, अल्लाह ताला ये जन्नत स्पेशल लोगों को दे रहा है जिनके पास नंबर वन ईमान। तो चेक योर ईमान। ईमान भी एक लेवल का नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इस पे कायम रखे। ये जो हम क्लास में बैठते हैं ना, हमारा ईमान इससे ताज़ा होता है, बढ़ता है। हम फील करते हैं कि जब हम कुरान सुनते हैं, इसकी तफसीर सुनते हैं, हमारा ईमान बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दिल की धुलाई हो रही है। 2 हफ्ते 4 हफ्ते ना सुने पता नहीं किधर चला जाता है, पता चलता है हमें, खुद फील होता है कि गिर रहा है नीचे। ईमान को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें? और फिर आमिलु सालिहात, फिर उसके बाद सौले अमल के ऊपर देखना। तो फिर प्लीज वो भी ऊपर ऊपर से नहीं देखना, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नहीं। फिर हर सल आखिरा को याद कर लीजिएगा, जो हमने ये आयत पढ़ी है इसको याद कर लीजिएगा कि क्या मेरा अमल साले भी हो रहा है या नहीं, मैं किस खेती में अपने अमल को लगा रही हूँ, मैं किसी के साथ नाइसली बात भी करती हूँ तो क्यों कर रही हूँ। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो। ये नहीं कि हाँ वो कहेंगे कितनी पोलाइट है, इसका अखलाक कितना अच्छा है। मैंने कि मुझे बुरा लगता है ना इस तरह, अगर मैं ऐसे बात करूंगी तो बुरा लगेगा। नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है ये, अखलाक बड़ा भारी तुलना है अमालनामे में। अखलाक में अच्छे अपने अच्छे करूं, देखिए कितना फर्क पड़ गया। अमले साले मेरे किस दर्जे के हैं, उनमें कितना इखलास है, और कितने मेरी जिंदगी में साले अमल हो रहे हैं, मैं किधर लगा रही हूं अपनी लाइफ को, अपनी इन सांसों को। ये जल्दी खत्म हो जाने वाली है, इनसे मैं अपनी आखिरत की खेती में जल्दी जल्दी बीज डाल दूं और उसकी निगहदाश्त भी करूं ताकि मैं उसकी फसल वहां काट सकूं। और अगर इसमें कुछ भी ना बोया, ना इसकी हिफाजत की, बो दिया तो उसके बाद हिफाजत नहीं की, वहां पे जाके क्या होगा? उसको कीड़ा अगर लग गया, नियत में फतूर आ गया, रियाकारी आ गई, उसके बाद कीड़ा लग गया तो वहां पे क्या काटूंगी? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कह दीजिए मैं नहीं मांगता तुमसे कोई भी अजर, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता कि तुम मुझे कोई फीस दो, कोई कोई मुझे पैसे इस तरह दो, मेरी कोई बड़ी इज्जत करो, मेरे साथ ऐसे सलूक करो, ये करो। मैं कुछ भी नहीं तुमसे मांगता, कोई लीडरी नहीं मांगता, कोई कोई वो लोग कहते थे ना, बस इनको तो शौक है भाई लीडर बनने का, इनको तो शौक है अपने बड़ा बनने का, शौक हो गया। वो अक्सर ऐसे इल्जाम लोगों पर लगाए जाते हैं ना, उन्होंने तो दुनिया बनानी है, पैसा बनाने का चक्कर है सब कुछ, कहते देते हैं ना इतने आराम से कह देते हैं। इसीलिए इस क्लास की कोई फीस नहीं है, कोई ये ना समझे कि भाई पैसा बनाने का इनका तो चक्कर है, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुमसे अजर चाहता, वो इज्जत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो तब भी उसके अपने कर्म है, उसका अपना अमल है। वो कोई देगा तो वो अपनी खेती में कुछ लगा रहा है, नहीं देगा तो भी अपनी खेती में, वो भी नहीं चाहिए। मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर सिवाय मोहब्बत के कराबतदारी में, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में चार अकवाल है। पहला कौल जो सबसे ज्यादा इसके बारे में राजे है, जो बेहतरीन है, वो ये कि मुहब्बत रिश्तेदारी की, यानी रिश्तेदारी की खातिर कोई, अब कराबतदारी की खातिर मोहब्बत, तो वो रिश्तेदारी की मोहब्बत ही रखो। यानी अगर तुम मेरे लिए तो कुछ और ना करो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, पर कम से कम रिश्तेदारी का ही पास कर लो, उसकी मोहब्बत तुमसे एक तरह से वास्ता है, वो उस ताल्लुक का वास्ता है तुम्हें, कम से कम तुम मेरी मुखालफत तो ना करो, मेरे रास्ते में रोड़े तो ना अटकाओ, रहम के रिश्तों का ही पास कर लो, क्योंकि दौरे जाहिलियत में इस चीज का बड़ा एहतराम किया जाता था। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरैश का कोई कबीला, आपको पता है ना कुरैश तो बड़ी ही है ना, उसके नीचे सब ट्राइब्स हैं, कुरैश एक ट्राइब है, फिर बनू हाशिम, बनू और भी ट्राइब्स थे, जो भी सब ट्राइब्स हैं उनके अंदर हर एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी थी, क्योंकि ऊपर जाके तो कुरैश बन जाता है ना, कहीं किसी की पांचवीं पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी निकल आई, कहीं किसी की सातवीं पुश्त में निकल आई, तो तुम अपने रिश्ते का ही पास कर लो और मेरी दुश्मनी छोड़ दो, ये मुझे ये काम करने दो, समझ आ गई बात? तो इस चीज का वास्ता दिया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, एटलीस्ट मेरी मुखालफत तो ना करो, एटलीस्ट मुझे ये काम तो करने दो। और दूसरा इसका माना क्या है? दूसरा इसका माना ये है कि कुर्बा से मुराद अल्लाह ताला का कुर्ब, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए करो, अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह ताला के कुर्ब की खातिर तुम ये करो, उसकी मोहब्बत में करो, मुझे नहीं अपने लिए कुछ चाहिए। ठीक है, तीसरा माना आपस में कराबतदारी के लिए, कुर्बा का माना लोगों की आपस में सिलाए रहमी, ये तुम मुझे तो कुछ ना दो मगर आपस में तो कम से कम रिश्तेदारी बनाओ, आपस में कम से कम सिला रहमी के साथ एक दूसरे के साथ रहो, ये पहले माने से बहुत करीबतर है। और आखिरी एक माना ज्यादातर, एक फिरका है जो ज्यादातर इस माने को लेता है कि अहले बैत से, यानी कुर्बा से मुराद अहले बैत हैं, मैं सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल करता हूँ, इल्लल मोहब्बत था सिवाय मोहब्बत के फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत की, मेरे रिश्तेदारों की। लेकिन ये माना इतना सही यहाँ पे नहीं बैठता, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत का क्या सवाल करना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ते थे, तो उनके रिश्तेदारों को क्या छोड़ेंगे, उनसे दुश्मनी में कुरैश मक्का कोई कम नहीं थे। और फिर दूसरी, वो लोग जो ये लेते हैं कि अहले बैत, वो कहते हैं कि हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन, हुसैन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ही हैं अहले बैत, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, कि इनके साथ बस अच्छाई, इनके साथ मोहब्बत रखो। तो बात ये कि अहले बैत तो सिर्फ ये नहीं है, उनमें बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, और मक्की दौर में तो अगर ये तफसीर समझी जाए तो मक्की दौर में तो हजरत फातिमा की शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर कहाँ उनकी मोहब्बत का वास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देना था। और फिर ये कि मैं तुमसे और कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ ये मांगता हूँ कि इनके साथ मोहब्बत करो, ये तो बहुत छोटा सा सिला है अपनी दावत दीन का, मैं सिर्फ तुमसे ये मांगता हूँ, तो ये तो बहुत छोटी सी कीमत मांगी गई। ये इतना बात नहीं समझ में आती कि ये इसकी तफसीर हो सकती है, लेकिन ये चार अकवाल कहे गए हैं, और पहला ही सबसे ज्यादा बेहतरीन है। बाकी ये नहीं कि अहले बैत की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए या उनकी इज्जत नहीं, जाहिर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में शामिल है ये बात कि उनकी अहले बैत के साथ भी मोहब्बत की जाए। किसी भी शख्स के साथ मोहब्बत होना आप उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक आप उसके जो घर वाले हैं उनके साथ ना मोहब्बत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक तो ये कुरान और एक मेरे अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी ताजीम, ये अहले सुन्ना वल जमा का अकीदा है। तो लिहाजा इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं है, लेकिन वो अहादीस डिफरेंट है, वो हदीस डिफरेंट है जिनमें अहले बैत के साथ मोहब्बत की बात की गई। इस आयत से यानी ये साबित नहीं होती, लेकिन बाकी अहादीस से साबित होती है। और बेशक अहले बैत की मोहब्बत हम सब के दिलों में होनी चाहिए। वमन यकतरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना, और जो कोई कमाई करेगा, अब यहां पे असल में वमन यामल, जैसे हम कहते हैं ना अमले साले, उसी की बात रही, लेकिन इक्तराफ लफ्ज आया। जख्म की खाल को कुरेदना, ये भी इसमें आता है। दरख्त की खाल छीलना, ये भी इक्तराफ है। तो मतलब है कि कमाई करना, कसब करना। और आपको पता है जख्म का छिलका बार बार आप अगर कुरेते जाते हैं तो जख्म कभी भी ठीक नहीं होता, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह नेकी को, एक नेकी के बाद दूसरी होती है, उसके बाद तीसरी होती है, उसके बाद चौथी होती है, यानी नेकियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। यहाँ पे ये लफ्ज लाया गया अमल की जगह, कि जो अच्छा अमल करेगा तो हम उसकी इस खूबी में इजाफा कर देंगे, उसकी नेकी में इजाफा कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमल एक होता है, लेकिन उसके अंदर जब इजाफा अल्लाह ताला कर देता है तो वो इस एक अमल की जजा कितनी गुना बढ़ जाती है, कितनी गुना उसके अंदर इजाफा हो जाता है। एक खजूर का जब बहुत पहाड़ के बराबर हो जाए, कोई नेकी 700 गुना फल लाती है, कोई नेकी 10 गुना लाती है, कोई नेकी 1000 गुना लाती है। और आपको पता है बाजार की जो दुआ है, वो पहले भी आपको मैंने बताई भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा हय्युन ला यमूतु बिहदिल खैर कुल्लु वहुवा आला कुल्ली शैइन कदीर। तो 10 लाख नेकियां मिलती हैं उसे। तो यानी नेकियों में भी ना हर एक नेकी एक पावर की कह लें या एक अजर की नहीं होती, हर नेकी के डिफरेंट, जैसे दरख्त हैं, सब दरख्तों के किसी, कोई दरख्त भर भर के फल लाता है, कहीं पे कम फल लगता है, फल उस पे भी लगता है लेकिन कम लगता है। तो कोई नेकी होती है इतनी ज्यादा उसका सवाब है। अब आप देख लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर दिन 1000 नेकियां करने से आजिज है, क्या तुम में से कोई हर दिन 1000 नेकियां करने से आजिज है? तो सहाबा ने कहा कि 1000 नेकियां कौन कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी 100 दफा सुभान अल्लाह कहे उसके लिए 1000 नेकियां लिख ली जाती है। तो 100 दफा मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 गुना यानी उसका जा रहा है, 1000 बन गई। इस तरह किसी चीज के ऊपर 1 लाख नेकियां, किसी पे 10 लाख नेकियां। अब रोजा है वो अल्लाह ताला ही उसकी अजर देगा, रोजा एक है लेकिन उसकी जजा इतनी बड़ी है, बताया ही नहीं गया, वहां जाके पता चलेगा। लेकिन बात वही है कि हम अल्लाह ताला, हमें वो वाली दुआ मांगने की जरूरत है, रब्बना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। अल्लाह दुनिया को ही हमारा सबसे बड़ा गम और हमारे इल्म की इम्तहाना बना दे। लाम मकसिम लाना मिन खशियती का, इसके अंदर ये पार्ट आता है, हम मसनून दुआओं में देखेंगे। अल्लाह दुनिया को हमारा सबसे बड़ा गम ना बना दे, हमें इतना इसी का गम लगा हुआ है, तो हमने ये नेकियां किधर से कमाने के लिए एफर्ट करेंगे हम, जबकि अल्लाह ताला उनमें इजाफा करता है, उनमें देखिए बढ़ोतरी करता है। हर नेकी का अल्लाह ताला ने कितनी कितनी गुना अजर बता दिया, फिर भी तवज्जो कम इसके ऊपर रहती है। तो 10 गुना भी हारे की नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, अपने हालात पे भी डिपेंड करता है। एक बंदा है वो 100 में 100 रुपए उसके पास, उसमें से वो 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, और एक है जिसके पास 1 अरब है उसके अंदर से वो 1 रुपया खर्च करता है। डू यू थिंक दोनों का रिवॉर्ड एक जितना? हरगिज नहीं। एक के पास 100 था, उसने उसमें से 1 निकाला, एक के पास 1 अरब है उसके अंदर से उसने 1 निकाला। दोनों के रिवॉर्ड में बहुत फर्क है, हालात पे भी डिपेंड करता है, खलूस पे भी डिपेंड करता है, किसने कितने इखलास के साथ, कितने शौक के साथ, कितनी मोहब्बत में अल्लाह के लिए दिया। आपकी मोहब्बत भी काउंट करती है, या आपको कितना शौक है अल्लाह के रास्ते में देने का, कितनी खुशी से आप दे रहे हैं। एक जकात भी जब इंसान खुशी से देता है, एक होता है देता तो है लेकिन बस इतना दिल नहीं है, बस दूसरे ने कह दिया, आप क्या करें, डोनेशन देना पड़ रहा है, जान ही नहीं छूटेगी दिए बगैर, दिया तो उसने भी है, क्या करें आप, बस जान छोड़े ये हमारी, रोज मांगने बैठ जाते हैं, तो अब नहीं देंगे तो अब चारा नहीं है कोई, और निकल ही नहीं सकते, वरना कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। तो हमारी देखिए नियतों में भी और हालात में भी फर्क होता है, काम वही है, खलूस में भी किसी का खलूस बहुत से आता है, किसी का कम है। इन अल्लाह गफूर शकूर, बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है शकूर भी है। गफूर यानी अल्लाह ताला के बहुत, ये दोनों प्यारे नाम, गफूर है, नेकी करोगे भी तो उसके अंदर भी कोई गलती हो जाएगी या कोई गुनाह भी हो सकता है इंसान से, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और छोटी सी भी नेकी है ना, उसका भी बड़ा कदरदान है, गुनाह बड़ा भी है तो बख्श देता है, गफूर है वो, इसमें भी मुबालगा है। और शकूर, नेकी छोटी सी भी है तो उसकी कदरदानी करता है, बंदे को उसकी उम्मीद से भी बढ़ के नवाजता है, उसके गुमान से भी बढ़ के नवाजता है, उसने सोचा भी नहीं होता मुझे ये सब मिल जाएगा। देखें अब एक एग्जाम्पल उसी से बात है ना, कि इंसान एक अमल को जो बजाहिर बजाहिर दुनियावी अमल होता है लेकिन उससे भी आखरत की नियत करके हर सुल आखिरा में कमाई कर लेता है, कि अरा कहते हैं कि मैं तमीम उद्दारी से मुलाकात के लिए गया तो वो खुद अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ कर रहे थे, हालांकि उनके अहले खाना वहां पे थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या कोई काम नहीं कर सकता, और फरमाया क्यों नहीं, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मुसलमान अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ करता है फिर उसको खिलाता है तो उसके लिए हर दाने के बदले एक नेकी लिखी जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब ये वो ही कर सकता है ना जिसको इल्म भी कोई हो, अब जिसको कोई इल्म ही नहीं है किस बातों से अल्लाह राजी होता है, कौन बातें हैं जो सवाब की हैं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे ज्यादा सवाब दिला सकती हैं, किस तरह मैं अपनी नीयत को बेटर कर सकती हूँ, ये तो सारा इल्म से आता है ना, किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना बढ़ा देता है, वो कितना देने वाला है, वो कितना ज्यादा कदरदान है। अब एक बंदा बजाहिर ये दुनिया का काम कर रहा है, अपने घोड़े को चारा दे रहा है, उसके लिए साफ कर रहा है, जाहिर है एक घर का काम है, लेकिन वो फिर भी उससे आखरत की नियत करके उससे आखरत को कमा सकता है। अल्लाह अकबर। हमें ये इस आयत से पता चला कि एक तो बशारत किन के लिए है, उन उसकी क्या शरायत है जन्नत की बशारत, दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी नबी ने भी अपनी कौम से कोई अजर नहीं मांगा, और यहाँ पे जो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा है उसके अंदर हम ये नहीं लेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगते थे लोगों से, क्योंकि ये आपकी शान के लायक नहीं है कि आप लोगों से कहें कि मुझे तो कोई और अजर नहीं चाहिए, बस ये अजर चाहिए कि तुम मेरे रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करो। जब आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो उनके लिए क्या मांगे। अच्छा, फिर हमें ये पता चलता है कि जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें किस तरह से इजाफा करता है, और इजाफा में अजर का इजाफा भी है और तौफीक मिल जाने का भी है कि और तौफीक मिल जाती है, और ज्यादा मिल जाए, और नेकियां करना आसान हो जाता है, और नेकी के और दरवाजे भी अल्लाह ताला खोल देता है। आप देख लेना, आप मैं किसी से बात की तो मैंने उनको उनको यार मुस्लिम थी तो उन्होंने कहा भाई आप इस तरह नमाज पढ़ें तो कितनी दफा आपको पढ़नी पड़ती है, आप रोज पढ़ते हैं क्या? मैंने बताया कि भाई हाँ इस तरह 5 दफा पढ़नी पड़ती तो, और रोजाना पढ़ते हैं हम, तो उसके लिए इतनी मुश्किल बात थी कि हाय 5 दफा आपको नमाज पढ़नी पड़ती, 5 दफा आपको टाइम के साथ पढ़नी पड़ती है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप जो नमाज पढ़ता है उसके लिए तो आसान ही है, अल्लाह ताला ने देखे जब आप कोई नेकी करते रहते ना अल्लाह ताला आपके लिए फिर आसानी पैदा कर देता है। अब किसी को आप कहते हैं कि भी मैं 2.5 घंटे क्लास के लिए बैठती हूँ, अब उसके लिए तो इतना मुश्किल है कि हाय इतना टाइम, और जब इंसान करता रहता है नेकी अल्लाह ताला उसके लिए इतनी सहूलत पैदा कर देता है कि अब लोग कहते हैं कि जी हमें इस दिन तो हमें लगता ही नहीं है दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है अगर छुट्टी कर दी जाए, हमें हमारे लिए तो ये एक ऐसी आदत बन गई है कि हमें जुमा जुमा ही नहीं लगता अगर हम उस दिन क्लास ना लें, तो उनको लगता है ये क्या कमी हो गई, उनके लिए बैठना बहुत आसान है, उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। तो जब आप कोई नेकी करते हैं ना फौरी तौर पे हो सकता है आपको वो मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप उसको जारी रखते हैं तो वो नेकी आपकी आदत बन जाती है। फिर आप अगर उस नेकी को छोड़ना भी चाहते हैं ना तो आप उसको मिस करते हैं, या कभी रह जाए ना, छोड़ना तो नहीं कोई चाहेगा, लेकिन अगर कभी रह जाए किसी वजह से, सन अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए या कोई ऐसी मसरूफियत हो जाए, तो दिल उस नेकी के बगैर उदास होने लगता है। हालांकि वो कोई फर्ज इबादत नहीं है, लेकिन बस उसकी ऐसी आदत पड़ गई, उसका ऐसा शौक पड़ गया, अल्लाह ताला उसकी उसकी ऐसी आसानी पैदा कर देता है उसकी। जैसे जिनको तहज्जुद की आदत हो, वो तहज्जुद कोई फर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर उनकी मिस हो जाए तो उसके बगैर उदास हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या मैंने बड़ी चीज मिस कर दी, क्यों मैंने मिस कर दी। किसी को रोजा रखने की आदत हो मंडे थर्सडे का, उसको वो लगता है कि ये मैंने बहुत बड़ा काम मिस कर दिया, वो शौक फिर चैन से बैठने नहीं देता। तो अल्लाह ताला किस तरह से इजाफा कर देते हैं उसमें खूबी का, इस तरह से ये और इजाफा हो जाता है। तो एक इसका माना बदले का भी है कि अल्लाह बदला, बदले में मतलब इजाफा करके बदला देता है, फिर नेकियों के दरवाजे भी खोल देता है, नेकी को आसान भी कर देता है। तो बहुत सारे माने इसमें हुस्ना में, इन अल्लाह गफूर उन शकूर, क्योंकि वो गफूर और शकूर है, उस नेकी करने में भी कोई थोड़ी ऊंच नीच तो कहीं हो ही जाती है, कोई इस तरह से परफेक्शन के साथ तो कोई भी नहीं होती, अल्लाह ताला माफ कर देता है, उसी नेकी की कदरदानी करता है। सुबहान अल्लाह, हम यकूलू नफ्तरा अल्लाह ही कदीबन, या वो कहते हैं इसने घड़ लिया अल्लाह पर, इसने किसने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला पे झूठ घड़ लिया, किस तरह ये कुरान ला के कि ये कहता है अल्लाह का कलाम है जबकि अल्लाह का कलाम नहीं है, ये खुद ही कहीं से घड़ के ले आया, वहां से सीख के ले आया, ये करके ले आया, ये इस तरह के इल्जाम लगाते थे ना वो, ये बहुतान था, झूठे इल्जाम थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फइन यशा इल्लाहु यख्तिम अला कल्बे, अगर अल्लाह चाहता मुहर लगा देता तेरे दिल पे, अगर आप ये करते तो अल्लाह ताला आपके दिल पे मुहर लगा देता, यानी ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये क्या समझते हैं अल्लाह ताला के ऊपर झूठ लगा के कोई गेट अवे हो सकता था? नहीं, अल्लाह ताला ने सूरह हाक्का में तो इससे भी बड़ी बात है जो वहां पे कही गई, वलाउ तकव्वला अलैना बादल अकावील लखदना मिन्हु बिलयमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हु अलवतीन वमा मिनकुम अनहु हाजिज़ीन। अगर ये नबी हमारे ऊपर कोई बात लगाता हमें इसकी रगे जान पकड़ लेते और उसको काट देते, और तुम में से कोई नहीं था जो कि इससे हमें रोक सकता, मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन वमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिज़ीन, तुम में से कोई ऐसा नहीं था जो हमें इससे रोक सकता। तो यानी अल्लाह ताला किसी को ऐसे खुली छुट्टी नहीं दे देगा कि वो अल्लाह के ऊपर बातें बना के और फिर कहे कि ये अल्लाह की बात है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा नहीं हुआ, ना मुहर लगी दिल पे और ना ही ऐसा हुआ, बल्कि आपकी बात तो आगे से आगे आपका कलमा फैलता ही गया, तो पता चलता है कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ से ही थी। यमहुल्लाहुल्बातिला वयहक्कुल्हक्का बिकलिमाती, और मिटा देता है अल्लाह बातिल को और हक को हक करके दिखाता है अपने कलिमात के जरिए, यानी अल्लाह ताला हक बात का बोलबाला करता है और बातिल को मिटा देता है। बातिल चाहे आज सर चढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन एंड ऑफ द डे बातिल को अल्लाह ताला कभी पायदारी नहीं देता। तो लोगों को बता दिया गया कि तुम ये तसल्ली रखो कि ये कलाम अल्लाह ही का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको घड़ के नहीं लेकर आए, क्योंकि अगर आप ये जुर्रत करते तो ये हो जाता। और फिर अल्लाह ताला हक को हक करके दिखाता है, हक वाकई एक दिन साबित हो जाता है। वाकई देखें, इस कलाम की कोई कोई इसकी मिसाल ला नहीं सका, कोई इस जैसा कलाम ला नहीं सका। अल्लाह ताला ने हक को हक करके दिखा दिया ना, और उनकी बातें बातिल थी, उनको तो चैलेंज भी किया गया, तो वही लेकर आए हैं कलाम, तो तुम भी ले आओ। मिट गई ना उनकी सारी बात। कई लोगों ने बनाने की कोशिश की, कहाँ गए वो कलाम, मिट गए सब। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तो जानने वाला सीनों के भेद। वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो जात है, यकबलु तौबतन इबादिही, वो तौबा को कबूल करता है अपने बंदों से, अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। व याफ़ु अन सय्यात, और वो उनकी बुराइयों को माफ करता है, उनकी बुराइयों से दरगुजर करता है। यालमु मा तफ़अलून, और वो जबकि जानता है जो तुम करते हो। लेकिन एक है किसी को पता ही ना हो कि कोई क्या कर रहा है, और फिर जाहिर उसको पता ही नहीं है तो फिर दरगुजर ही हो गया, या किसी के अंदर ताकत ही नहीं है पकड़ने की, और वो कहे कि अच्छा मैंने तो माफ ही कर दिया, तो वो भी जाहिर उसने माफ ही करना, और बेचारा क्या कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला वो जात है कि जिसको पता भी है, या आलमो मा तफालून, जो जानता भी है अच्छी तरह, और फिर वो पकड़ने की ताकत भी रखता है, कुदरत भी रखता है, तब भी वो माफ कर देता है, मोहलत देता है, दरगुजर कर देता है। जबकि अगर वो पकड़ने लगे तो फिर कोई इस जमीन पे आपको चलता फिरता ना नजर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया यकबलु तौबता, ये मुस्तकबिल के लिए, आगे के भी गुनाहों को बख्श देता है। जैसे आप अरफा के दिन का रोजा रखते हैं आप, तो अगले एक साल के गुनाह भी माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुस्तकबिल की भी, जो इंसान से नाफरमानियां कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता। और याफू अन सय्यात, तो इबन कसीर कहते हैं कि ये यकबलु तौबता ये मुस्तकबिल के लिए, और याफू अन सय्यात ये माजी के लिए, माजी की भी बुराइयां अल्लाह ताला माफ कर देते जो हो चुकी पिछली जिंदगी में। तो तौबा का मतलब होता है पलट आना, तौबा का मतलब ये नहीं होता कि बस इंसान ने एक तौबा की तस्बीह कर ले तौबा इस्तगफार की, तौबा का मतलब है पलट आना, कि इंसान रियलाइज कर ले, पशेमान हो जाए, मेरा रास्ता सही नहीं था, वापस पलट आए, छोड़ दे इस गुनाह को। तो तौबा के लिए क्या शराइत है? एक तो इंसान सिर्फ अल्लाह की खातिर तौबा कर रहा हूं, पहली बात ये कि इखलास हो उसमें, ये नहीं कि किसी डॉक्टर ने कह दिया ये सेहत के लिए चीज ठीक नहीं है, या रोजा रखने, अगर आप इतनी देर फास्टिंग करेंगे तो आपका वेट लूज होगा, मिसाल के तौर पे एक वैसे कह रही हूँ, तो आपने कहा चलो मैं रोजा रख लेती हूँ, और ये फिर नेकी का काम नहीं हुआ। और यहाँ पे तौबा के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आपको किसी ने कहा कि ये भाई चीज सेहत के लिए खराब है और आपने इसलिए वो छोड़ दी, या आपने मास्क इसलिए पहना है कि बीमारी ना लग जाए, आपको कोई अपने आप को ढांपने का या अपनी ब्यूटी डिस्प्ले ना करने का कोई वो नहीं था, इरादा नीयत नहीं थी, आपने अपने सर को कवर किया क्योंकि सर कवर इसलिए कि डस्ट बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, मेरे बाल फिर खराब हो जाते हैं, टेक्सचर खराब हो जाता है बालों का, तो कवर इसलिए नहीं किया कि कोई अल्लाह का हुक्म है, कवर तो इसलिए किया कि जो है मेरे बाल ना खराब हो जाए, मैंने अबाया या बड़ी चादर इसलिए पहनी कि आज मेरे पास जो कोई ढंग के कपड़े नहीं थे पहन के जाने के लिए मस्जिद, तो अबाया पहन लिया क्योंकि कोई नया सूट है ही नहीं है। तो ये चीजें फिर नेकी में काउंट नहीं होंगी। तौबा का मतलब ये होता है कि इंसान सिर्फ अल्लाह की खातिर उस गुनाह को छोड़ता है, उसको शर्मिंदगी होती है, अफसोस होता है, निदामत होती है, कहता है मेरे से क्यों हो गया ये। फिर इंसान उस गुनाह को छोड़ने के लिए मतलब ना आइंदा करने का इरादा करता है और इस वक्त छोड़ देता है। ऐसे नहीं है कि छोड़ता ही नहीं और बस तौबा तौबा करता जा रहा है। मुझे पता है मैं ये गुनाह करती हूँ, बस तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन उसके बाद छोड़ना भी नहीं है। ना करने का इरादा करना ये भी एक शर्त है कि आपकी ये इरादा हो कि मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। हाँ वो हो गया दोबारा गलती से, वो अलग बात, आज लेकिन इरादा कर। और अगर मरने के बाद इंसान तौबा तौबा करता भी रहेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। तौबा का दरवाजा सिर्फ उस वक्त तक खुला है जब तक ये जान हलक में नहीं आ जाती, तब तक खुला है, फिर बंद हो जाएगा। वहां पे कब्रों में जाके लोग चीखते फिरें तौबा तौबा अब नहीं करेंगे, कयामत के दिन लोग जितना मर्जी कहते रहेंगे अब नहीं करेंगे, अब हमें वापस भेज दे, वो तौबा नहीं है, वो अब नहीं कबूल होगी। और हकुकुले बाद में से अगर किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई है तो उसका हक लौटाया जाए, तब है तौबा। तौबा ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाती कि बस तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीहां हो गई। तो तौबा की दावत दी जा रही है, बंदे को बताया जा रहा है, अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है, नहीं तुम आओ तो सही अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला तो तौबा ना सिर्फ कबूल करता है बल्कि तुम्हारी तौबा से खुश भी होता है। देखिए हमारे पास कोई आके ना सॉरी करे ना माफी मांगे तो हम कहते अच्छा चलो माफ कर दिया, लेकिन दिल हमारा फिर भी खुश नहीं होता कि हम मैं बड़ी माफी कर रही हूँ तो मैं बड़ी खुश हूं कि मैंने इसको माफ कर दी। नहीं, दिल में फिर भी रहती है, दिल चाह नहीं रहा होता माफ करने का, लेकिन बस अब क्या करें, अब इतना ही कह रहा है तो माफ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं, वो खुशी से माफ करता है, वो इस तरह से नहीं कि जैसे हमने ग्रज पाले में दिल के अंदर, दिल में फिर भी बात रखी हुई है लेकिन ऊपर ऊपर से कह रहे हैं माफ कर दे, वो भी नहीं है। वो माफ कर देता तो मिटा देता उस गुनाह को। जो याफू है ना उसको इस तरह समझते हैं, और याफू हने सयात, वो दरगुजर कर देता है, माफ कर देता है। अफा याफू का मतलब होता है जब पैरों के निशान कहीं लगे हो ना और उनके ऊपर हवा चले तो जैसे वो मिट जाते हैं, इस तरह अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। अब हम सोच लें कि हम नहीं जानते आज हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, हमें नहीं पता कि कल को हमने क्या करना है, किस चीज़ पे हमारी मौत आनी है। और दूसरे लोग जिनको आज अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम जज कर रहे हैं कि ये तो बहुत बुरे हैं, वो तौबा करके और उनके सारे गुनाह मिट जाएं, उनकी अल्लाह ताला तौबा कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है। कभी किसी को इस तरह से जज ना करें। मैंने एक वीडियो किसी ने भेजी, एक देखी, एक बंदा था उसके पूरे चेहरे के ऊपर टैटूज थे, पूरे चेहरे पे, अल्लाह माफ करे, इतने अजीब लग रहे थे, सारी शक्ल जो है ना वो बदनुमा हुई हुई थी, और वो शहादा ले रहा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, यू नेवर नो। तो इसलिए अल्लाह ताला तो माफ कर देता है सारे गुनाहों को पिछले, तो मायूस ना हो। कितना भी कोई कहाँ तक पहुंच गया हो उसके पास पलटने का रास्ता फिर भी मौजूद है। अल्लाह ताला माफ करता है, खुशी से माफ करता है, बल्कि वो कहता है मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों कहता नहीं है आ रात के आखिरी तहाई से? फिर हदीस से पता चलता है अल्लाह ताला दिन को माफ करता है रात के गुनाह करने वालों को, रात को माफ करता है दिन के गुनाह करने वालों को, यानी वो माफ करता जाता है, कॉन्स्टेंटली माफ कर रहा है। तो हमें कितनी कॉन्स्टेंटली तौबा करनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने हज पे तौबा कर ली अब मेरे लिए काफी है, सारी जिंदगी के लिए वही तौबा, कम से कम 1 साल 2 साल तो काफी चलेगी वो। या रमजान में मैंने तौबा की थी ना ताक रातों में, अब बस वो काफी है, इस्तगफार कर ली थी मैंने। नहीं, कॉन्स्टेंटली इंसान लगा रहे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उससे गुनाह होते हैं, उससे गलतियां होती हैं, वो माफियां मांगता रहे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जानता है कि जो तुम करते हो फिर भी वो माफ करता है, तो उसकी शाने गफारी को देखो, वो कितना गफूर रहीम है कि फिर भी माफ करता रहता है। वयस्तजीबु लदीना आमनू आमिलुस सालिहात, और वो कबूल करता है उनसे जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए। यस्तजीब में मुबालगा है, वो जवाब देता है, कबूल करता है। जब इंसान मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसकी मांगे कबूल करता है, उसकी दुआएं कबूल करता है जो ईमान लाए और जिन्होंने साले अमल किए। नहीं, ईमान ला के साले अमल करने वालों का कितना बड़ा मकाम है, आप सोचें कितनी बड़ी शान है उनकी अल्लाह के यहाँ। इंसान कितने बड़े दर्जे पे पहुंच सकता है अल्लाह के यहाँ जिस वक्त के वो ईमान ला के साले अमल कबूल करने लगता है। अल्लाह ताला तौबा भी कबूल करता है, अल्लाह ताला उनकी जो दुआएं हैं वो भी कबूल करता है, पिछले गुनाह हैं उनको भी माफ कर देता है, आने वाले हैं उनको भी माफ कर देता है। अल्लाह ताला को पता है इंसान ने क्या क्या किया, वो कोई इंसान छुपा नहीं सकता कुछ भी अल्लाह से, इंसानों से छुपा सकते हैं अल्लाह से नहीं, तो छुपाने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला के सामने कन्फेशन करना अल्लाह को बहुत पसंद है कि इतराफ कर लें कि मुझसे गलत हुआ, और फिर अल्लाह ताला तौबा को भी कबूल करता है। यहाँ पे ये भी माना है कबूल के सजीव किसके लिए, कबूल करना, तौबा को भी कबूल करता है, क्योंकि ईमान और अमने साले वालों से भी गलतियां होती हैं, ऐसे नहीं है वो परफेक्शन के लेवल पे पहुंच जाते हैं, और दुआ भी करते हैं तो कबूल होती। तो याद रखें यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सिर्फ अंबिया की ही दुआएं कबूल होती हैं बाकी किसी की नहीं, या कि सिर्फ फलां फलां की दुआ कबूल होती है बाकी तुम लोग छुट्टी करो उनके पास जाया करो दुआएं कराने के लिए, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने बता दिया नेक आमाल करने वाले जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते उनकी भी अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। व यजीदुहुम मिन फजली, और ज्यादा देता है अपने फजल से, अल्लाह ताला ज्यादा देता है अपने फजल से, यानी जितनी दुआएं की हैं उनसे भी ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। जैसे मैंने आपको कभी कहा कि कितनी बेशुमार नेमतें, बल्कि मैं तो कहती हूँ ज्यादातर नेमतें वो हैं जो हमने कभी मांगी नहीं है और फिर भी हमें मिली नहीं है, कम है जो हमने मांगी और हमें मिली, ज्यादा वो है बिन मांगे ही अल्लाह ताला ने दे दी। पता नहीं कितनी मुसीबतें हमारी तरफ आने वाली हैं, अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया हमसे, ये उसका फजल है जिसकी दुआ भी नहीं हमने कभी की हो, और उन जरूरतों को भी पूरा कर देता है जिनको हमने कभी मांगा भी नहीं, हमें पता ही नहीं था ये भी हमारी जरूरत है। आंख का झपकना, सांस का लेना, दिल का धड़कना, हमने कब मांगा। और इसके अलावा भी अल्लाह ताला कितने इनामात से नवाजता रहता है। और वह यजीदुहुम मिन फदली का दूसरा दूसरी तफसीर जो उलमा ने की है वो ये की है कि अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला वो भी अता कर देगा, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल करता है, और ये उसका फजल है कि वो अपना दीदार कराएगा ईमान और अमले साले करने वालों को। अल्लाह अकबर, गो के ये फजल है, ये उनका यानी हक नहीं है, ये फजल है अल्लाह का। और इसका ये भी एक तफसीर की गई कि नेक लोगों को अल्लाह ताला एजाज देगा, ये भी उसका फजल है कि एजाज देगा उस दिन कि वो शिफात करें, और अब उनकी शिफात से अल्लाह ताला जहन्नमियों को, बाज जहन्नमियों को जन्नत से निकालेगा। ये भी अल्लाह ताला की उनको एक ऑनर देना है ना, ये अल्लाह का फजल है उनके लिए, कितना बड़ा एजाज है ना कि आपके कहने के ऊपर किसी को जहन्नुम से निकाला जाए। तो इनमें अंबिया तो होंगे लेकिन हुफाज के बारे में भी आता है, नेक लोगों के बारे में भी आता है, जैसे यहाँ पे वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद, और काफरों के लिए शदीद अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। वलो बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह ताला लोगों का रिज्क फैला देता तो लोग तो बगावत कर देते, सरकशी में आगे बढ़ जाते। यानी ये इसमें हिकमत बताई गई, अल्लाह ताला की हिकमत है रिस्क देने में भी, रिस्क की तकसीम में। ये तो हम कहते हैं ना सबको ऐसे क्यों नहीं मिल गया, उसको क्यों नहीं मिल रहा, ये क्या हमें ऐसे लगता है कि बस ऐसे ही किसी को भी दे दिया और ऐसे ही किसी को नहीं दिया, या किसी को कम क्यों दिया या किसी को, अल्लाह ताला को बेहतर पता है किसको देना उसके लिए बेहतर, किसको कम देना बेहतर, किसी को ना देना बेहतर, इसके लिए क्या बेहतर है? अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि आप देखें, आप अगर नोट करें, दुनिया में ये जो सरकशियां हो रही हैं, लोग आपे से बाहर हुए हुए हैं, लोग गफलतों में पड़े हुए हैं, वो ज्यादातर लोग कौन है जिनके पास रिस्क की फरावानी है? आज शराब खाने किससे चल रहे हैं? गरीबों से थोड़ी चलते हैं, जुए खाने, जिना के अड्डे, फिर इस तरह की चीजें, ये किससे चल रही हैं? जिनको पास बहुत कुछ पैसा इतना है कि वो उनको इस तरफ ले गया, जो गरीब है उसके पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं। फिर आप उसके अलावा भी देखें, ये जो इसराफ है, जो शादियों पे उड़ाना, जो और चीजों में ढोल धमाके बाजे गाजे हैं, या जो जो तकबर, जो शॉपिंग ऐसी डिजाइनर का ये मैंने जोड़ा पहना रही है, ये किन के मामलात हैं? या जो गफलतें हैं, बिल्कुल अल्लाह को भूले हुए हैं, बिल्कुल आखरत को भूले हुए हैं, ये किन में है ज्यादा जिनके पास रुपया पैसा बहुत? अक्सरियत तो नहीं की है ना, आप देखें। अल्लाह ताला को पता है किसका रिस्क में ज्यादती करनी है, ये भी उसकी मशीयत है, ये भी उसकी, उसके अंदर कोई हिकमत है। अगर अल्लाह ताला सबको एक जितना दे देता, सबको मालदार बना के बिठा देता, तो क्या होता? फिर इस दुनिया का तो निजाम नहीं चल सकता था, इस दुनिया में तो फिर कोई काम हो नहीं सकता था, इसलिए कि फिर क्या है, सभी बेगम साहिबा होती, काम कौन करता? कतादा इसीलिए इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बेहतरीन रिस्क वो है जो तुम्हारे अंदर सरकशी पैदा ना करे और ना तुम्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल करे, वो है बेहतरीन रिस्क। चाहे वो थोड़ा हो, लेकिन वो बेहतरीन रिस्क है तुम्हारे लिए। अब हम अपनी अकल से सोचते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूं, उसको क्यों नहीं मिला, उसका क्या कसूर है? अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसी को वो देगा तो वो क्या करेगा, किसी को ना दे के उसके साथ भलाई अल्लाह ताला ने कर दी, किसी को दे के अल्लाह ने उसको आजमा लिया। ये बात बस याद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला का देना उसकी रजा की निशानी नहीं है और उसका ना देना उसकी नाराजगी की निशानी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बारे में फकर से नहीं डरता कि तुम फकीर हो जाओगे, कहोगे कहाँ से हाय भूखे मरोगे, इससे नहीं डरता, मगर मैं तो इस बात से डरता हूँ कि दुनिया तुम्हारे ऊपर कुशादा कर दी जाएगी, इतना माल होगा, इतना माल होगा जैसे तुम्हें से पहले लोगों के लिए कुशादा कर दी गई, फिर इसमें तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने लगोगे जैसे तुमसे पहले लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे, और फिर वो तुम्हें गाफिल कर देगी ये दुनिया जैसे उनको कर दिया। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते इस बात से थे कि दुनिया कुशादा हो जाएगी, क्योंकि जब ये बहुत मालो दौलत आता है ना, तो अपने साथ बहुत सारी आजमाइशें लेकर आता है, बहुत सारे फितने लेकर आता है, ये जो एक्स्ट्रावेगेंट होना, तकब्बुर लोगों में आता है, इसराफ लोगों में आता है, आपे से बाहर हुए जा रहे हैं, कतई रहमी कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारी गुनाह एक इस वजह से होते हैं कि इंसान के पास जब माल बहुत आ जाता, अब उसको समझ नहीं आ रही मैं लगाऊं कहाँ। अब आज देख लें, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनकी कोई समझ नहीं आती कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है पैसा बहुत है ना। अब जब पैसा बहुत है तो उसको किधर डंप करें, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, खर्च करने को जगह नहीं मिल रही। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे डरते थे कि जब तुम्हारे पास, वरना तो सहाबा कराम देखें कितनी गुर्बत में उन्होंने जिंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उस चीज से नहीं डरे कि इनके ऊपर फकर क्यों है, आइए इतना थोड़ा क्यों खाते हैं, इनके घर बड़े बड़े क्यों नहीं, इस चीज के ऊपर रो रहे हैं, कभी भी नहीं हमने ये ऐसी हदीस पढ़ी, इनको रोटी पूरी क्यों नहीं मिल रही, ये भूखे क्यों सो गए, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि उनको ये डर था कि ये दुनिया बहुत आ जाएगी लोगों के पास, क्योंकि तो उनको पता था ना कि फिर उसके बाद क्या कुछ फितने इसके साथ आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो माल आने के बाद अपने आप को संभाल के रख लें, बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर लोग तो अल्लाह रसूल को भूल जाना, दीन को भूल जाना, आखरत को भूल जाना, आपे से बाहर हुए चले जाते, कोई लिमिट ही नहीं है, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं रहती क्या हुक्म अल्लाह का है, उनको तो ये जरूरत ही नहीं, ऐसे लगता है कि वो बस इससे फारिग हो गए। कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हमें इबादतों की भी क्या जरूरत है, नमाजों की भी, हमारे पास सब कुछ है। हाँ ये तो वो करें, किसी के मुंह की ये बात है। ने कहा ये तो वो काम वो करें जिनके जिनको कोई जरूरत है, कुछ चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारे पास सब कुछ पहले ही है। ये तकब्बुर की बातें कब आती हैं, जब आगे पीछे नौकर चाकर हो, रेल पेल हो पैसे की। तो हम ये नहीं समझते कि ये जब बहुत ज्यादा अल्लाह ताला किसी को रिस्क दे दे तो उसके साथ हम अपने आप को संभाल भी सकेंगे कि नहीं, हम अब आपे में रह भी सकेंगे कि नहीं। तो ऐसा रिस्क तो इंसान के लिए उल्टा एक मुसीबत है जो अल्लाह से दूर कर दे, एक अजाब है जो अल्लाह से गाफिर कर दे। तो जायद माल की इंसान हिर्स तो रखता है, बहुत ख्वाहिश रखता है, लेकिन जायद माल से जो कबाहतें हैं, आप देख लेना, आप इसी रात कोई बहुत आरामदेह बिस्तर पे और एसी चला हुआ है और हर चीज से यह सो जाएंगे तो उसके बाद फजर के लिए उठना मुश्किल हो जाए, तो फिर ऐसी चीज का क्या फायदा। ये तो एक एग्जाम्पल एक चीज से है ना, लेकिन अब बेशुमार चीजें, जितना उड़ाया जा रहा है माल, जिसका हिसाब होना, जिसके पास जितना ज्यादा उसका हिसाब उतना ही ज्यादा, क्वेश्चन उतने ही ज्यादा, क्योंकि इब्ने आदम के कदम नहीं हिलेंगे हशर के मैदान से जब तक वो इस बात का जवाब नहीं दे देता उसने कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ पे किया। माल के दो सवाल हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन हैं, इसके बगैर नहीं हिलना। हम देख देख के हमारे मुंह में पानी आता है, उनके पास कितना पैसा है, वो कितने मजे में है, वो हमें देखो जरा। तो रिस्क की कमी बुराई नहीं, हाँ फकर से पनाह मांगी गई है, लेकिन आप खाते हैं पीते हैं, आपके सर पे छत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सेहत के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अमीर हैं। तो वला कि युनज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन अल्लाह ताला उतारता है सात अंदाजे के जो वो चाहता है, ये अल्लाह की मशीयत है, ये हमारे फैसले नहीं है और ना होने चाहिए, और ना हमें अपने आप को इतना समझना चाहिए कि मुझे पता है कि किसको कितना मिले, ये अल्लाह का फैसला है और वो बेहतर जानता है। इन्नहु बिइबादी खबीरुम बसीर, वो अपने बंदे के बारे में खबर भी रखने वाला, देखने वाला, उसको अच्छी तरह खबर है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी है कि मेरे बंदे ऐसे भी हैं जिनकी सलाहियत मालदारी नहीं है, अगर मैं इन्हें फकीर बना दूं तो वो दीनदारी से भी जाते रहेंगे, और मेरे बंदे ऐसे भी हैं कि इनके लायक फकीरी है, अगर वो माल हासिल कर ले तो इस हालत में इनका दीन फासिद हो जाएगा, यानी वो ऐसे दीन से दूर होंगे कि फिर कोई और ही चल पड़ेंगे। अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता है, खबीर है वो, बसीर भी है, देख भी रहा है और उसको बड़ी अच्छी तरह खबर है। लेकिन आपके बच्चे होते हैं, एक बच्चा है जो प्यार मोहब्बत से कोई चीज काम करता है, दूसरे बच्चे को जरा सख्ती करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपके उनके साथ खैरख्वाही है, प्यार करने में, उसके साथ जरा डांट टपट करने में, सख्ती करने में, अल्लाह ताला को पता है किसको किस तरह से क्या देना है, कितना देना है और किस तरह से उसका इम्तिहान देना है। और अमूमी रिस्क एक वो भी है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने सबको ही दिया गया, जैसे बारिश है, हवा है, पानी है, ये सब चीजें रिस्क है, जिंदगी है। बाद और वो अल्लाह ही है जिस नाजिल करता है बारिश को इसके बाद कि वो मायूस हो गए, वयन शुरू रहमत है, और वो अपनी रहमत को फैला देता है, बारिश को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत करार दिया है, बारिश अल्लाह की रहमत है। इससे देखें बहुत से जमीन के ऊपर भी फवायद है, और वो कब अल्लाह ताला उतारता है, जब वो बिल्कुल मायूस हो गए, बिल्कुल मायूस होने के करीब है, तो उस वक्त अल्लाह ताला उतारता है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर रोज ही बारिश करता रहे तो इंसान दुआएं ही ना करें, उनको कदर ही ना हो। अल्लाह ताला वो वाली बारिश गईस जो के खुश्क साली के बाद हो, तो जो नेमत मुसीबत के बाद मिलती है या बड़ी दुआएं मांग मांग के मिलती है, इंसान उसका फिर बड़ा शुक्र अदा करता है, उसकी कदर भी करता है, तो अल्लाह ही है जो वो उस बारिश को उतारता है। बारिश को रहमत कहा गया, बारिश को मुबारक कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो इस दौरान बारिश हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा खोल दिया और बारिश का पानी अपने ऊपर लेने लगे। हमने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, बारिश का जो पानी है ये अपने रब की तरफ से अभी अभी आया, मैंने अब अल्लाह की तरफ से उतरा है। और आपको पता है बारिश के वक्त दुआएं भी कबूल होती हैं, तो ये दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है। बारिश का पानी अपने ऊपर लेना ये भी भाई से बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, तो ऐसे नहीं कि बारिश होने लगे तो इंसान भागने लगे, आए मेरे ऊपर पानी का कतरा ना पड़ जाए। हाँ, अब सर्दियां हैं अलग बात है, मगर बारिश को रहमत कहा गया ना, देखें यहाँ पे तो उसको रहमत समझें भी, ये नहीं कि आए हाय बारिश हो गई, मेरा तो सारा प्लान था बाहर जाने का, बारिश हो गई, नहीं उसको रहमत समझें। आप भी कभी अपना बारिश का पानी अपने ऊपर ले सकते हैं और उस वक्त भलाई की दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि फरमाया दो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, अजान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की। हाँ, अगर बारिश ऐसी है कि बहुत तेज फ्लडिंग होने लगी है, तो फिर अल्लाह ताला से ऐसी बारिश बारिश के लिए की भी खैर मांगे, उसके अल्लाह उसको हमारे लिए रहमत बनाना, जहमत ना बनाना। वहुवल वली अल हमीद, और वो वली भी है हमीद भी है, वली दोस्त और हमीद जिसकी तारीफ होती है, तो वो अपने बंदों के ऊपर अपनी रहमत बरसा के वो कारसाज है, उनका दोस्त है, उनकी कारसाजी करता है और वो तारीफ वाला है। वह मिनायाती है खल्कुस समावाती वाला, और उसकी निशानियों में से है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी कि उसने आसमान को बना दिया और जमीन को बनाया। आसमान में जितना गौर करें, जितनी हद तक अभी तक इंसानी इल्म जहां तक पहुंचे अगर गौर करें, तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है कि कहाँ तक उसकी कायनात फैली हुई है, कैसी है। और फिर जी आवाज आ रही है, अच्छा, तो कायनात की निशानियां आसमान भी है और जमीन भी, वमा बत्सा फीहिमा, और जो भी उसने फैला दिए इन दोनों में, किन में, आसमान में और जमीन में, मिन दाबतें, जानवरों में से या हैवानात में से या जानदारों में से, जानदार मखलूक। अब देखें आसमानों की तरफ जाते हैं, यहां पे तो पता चला कि आसमान में भी है दाबा, तो फरिश्ते का तो फरिश्तों का हमें पता है, जिन्नों का भी पता है, आते जाते रहते हैं, लेकिन और क्या मखलूक है हमें नहीं मालूम, हमारा इल्म ब्लैंक है बिल्कुल। एलियंस के बारे में कहते हैं वल्लाहु आलम, मगर इससे पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह ताला ने और भी जानदारों को फैलाया हुआ, और जमीन में तो बेशुमार हैं जिनका अभी तक सारों का तो पता ही नहीं चला। तो इस आयत से हमें ये भी पता चलता है हो सकता है और किसी प्लेनेट के ऊपर और कोई मखलूक हो अल्लाह ताला की, हम नहीं जानते, जिनको आज तक इंसान ने डिस्कवर नहीं किया। कभी कर लेंगे तो फिर कहेंगे कि अच्छा देखो कुरान में तो उस वक्त लिखा हुआ था, वहु आला जमईहिम इज़ा यशाउ कदीर, और उनके जमा करने पर जब वो चाहे, कुदरत रखने वाला है, जब चाहे कयामत को बर्पा कर दे, और सबको जो पता नहीं किस किस प्लेनेट पे कोई बैठे हुए हैं या किस किस आसमानों में बैठे, क्योंकि आसमान से मतलब यही सिर्फ आसमान ही, आसमाने दुनिया में ये सारी जितनी हमारे सामने कायनात है, जितनी गैलेक्सीज हैं, वो सब आसमाने दुनिया के नीचे ही हैं, इसको सबको आसमाने दुनिया कहते हैं, इससे ऊपर हैं जो ऊपर के आसमान है, जब चाहे सबको जमा कर ले, उसके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और जो भी मुसीबत तुम पे पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अव्वलीन मुखातिब तो मुशरिकीन ने मक्का थे, तो आपको पता है उनके ऊपर कहत भी आया था, कहत आया, उनको बड़ी तकलीफ हुई इस कहत से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन अमूमी भी बात है ना, सिर्फ उनके ऊपर नहीं बात है, एक अमूमी कायदा है, इसमें हर तरह की मुसीबतें आ जाती हैं, चाहे माल में आएगी, चाहे औलाद में आ गई, चाहे किसी प्यारे अजीज में आ गई, चाहे सेहत में आ गई कोई ऐसी मुसीबत, बीमारी कोई आ गई, तो चाहे दीन के मामले में कोई मुसीबत आ गई, वो इसलिए होती है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी में होता है, अल्लाह ताला उसको उससे जगाना चाहता है, ख्वाबे गफलत में होता है, अल्लाह ताला उसकी गफलत से उसको निकालना चाहता है,
दीन से दूर होता है, अल्लाह ताला उसको इस तरफ लाना चाहता है, कोई गुनाह कर रहा होता है अल्लाह ताला उसे छुड़ाना चाहता है, अल्लाह ताला उसको एक मुसीबत में मुब्तला कर देता है और उस मुसीबत के जरिए उसके गुनाह को धो देता है और उसको अपने से करीब कर लेता है। तो किसी मुसीबत का सबब दो चीजें हो सकती, या तो इंसान की गुनाह और उसकी नाफरमानियां, नंबर टू अल्लाह ताला ने उसके दर्जात को बुलंद करना हो और उसके सब्र पे उसको अजर देना हो, जैसे कि अंबियाए कराम है। तो हम नहीं ये कह सकते कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत सिर्फ उसके गुनाहों की वजह से आई, क्योंकि अंबिया के ऊपर आजमाइशें आई हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसको आजमा लेता है, उसको आजमाइश में डाल देता है। तो आजमाइश के लिए भी होती है। बाज़ दफ़ा इंसान परेशान हो जाता है कि क्यों मेरे ऊपर मुसीबत आई और फलां की वजह से आई और फलां की वजह से ये हुआ, और कभी अपने गुनाहों की तरफ नहीं तवज्जो करता, जबकि यहाँ पे है कि इंसान की अपनी नाफरमानियां होती हैं, इंसान का अपना कोई गुनाह होता है। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। आप देखें, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझें, सहाबा कराम ने एक नाफरमानी की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कहने को नहीं सुना था ओहद में कि वो पहाड़ी से उतर आए थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई गुनाह था, बेकर गुनाह इस तरह से था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था और एक नाफरमानी उनसे हो गई, उसकी वजह से कितनी बड़ी शिकस्त हो गई और किस तरह शहादतें हुई, किस तरह पैनिक मच गया, कितना कुछ उनको फेस करना पड़ा। एक ऐसी चीज की वजह से एक इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा, जबकि हम तो पता नहीं कितनी नाफरमानियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, उसके बाद माफियां भी नहीं मांगते, वो गुनाह करते हैं और ढीठ रहते हैं और गुनाह करते हैं और उसको गुनाह नहीं समझते, और गुनाह करते हैं और उसके ऊपर बल्कि फखर करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन अपने गुनाहों को तो इस तरह समझता है कि गोया वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, और उसको ये लगता है, डर लगता है कि ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, और जो मुनाफिक है, फासिक फाजिर है, वो अपने गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी, वो हाथ से झटक के उस मक्खी को उड़ा देगा। तो वो उसके लिए तो गुनाह कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे करता है बस, इसमें कौन सी बड़ी बात। आप लोग तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप तो बहुत रिजिड है, अल्लाह भला इससे भी क्या होता है, सारी दुनिया करती है आजकल, यानी उसके लिए गुनाह कोई चीज ही नहीं है, नाक पे बैठी हुई मक्खी है। और मोमिन अपने गुनाहों को इतना संगीन समझता है, इतना सीरियस समझता है। तो ममा सबक में मुसीबत फबीमा कसबत अयदी, तो अपने इंसान गुनाहों को याद करे, जब कोई मुसीबत आए वो फौरन सोचे मुझसे गलती हुई है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक असलाफ में से एक किसी का ये बात आती है कि उनके फोड़ा या फिंसी भी निकल आती थी तो इस्तेफार शुरू कर देते थे। तो इस्तेफार शुरू, तो लोग कहते कि आप इस पे इस्तेफार क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह ताला किसी इंसान के गुनाह की वजह से उसको मुसीबत में डालता, तो ये मेरी किसी गुनाह का नतीजा होगा। लेकिन कितने लोग ऐसा सोचते हैं, और कितने लोगों को फिक्र होती है उसके बाद कि हाय मैंने इस्तेफार करनी है। हदीस में आता है जब भी किसी रग या आंख को नुकसान होता है, यानी इंसान में कोई बीमारी आ गई उसके जिस्म में, तो किसी ना किसी गुनाह की वजह से होता है, और बहुत सारी तकालीफ तो अल्लाह ताला ऐसे ही मिटा देता है, दूर कर देता है। आगे आया ना वो याफो अन कथीर, अल्लाह ताला बहुत सारी हमारी गलतियों से तो वैसे ही दरगुजर कर देता है, नहीं उनके ऊपर पकड़ता। मगर बाज दफा इंसान की जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं वो अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं, तो बजाय उस वक्त अल्लाह से बदजन होने के, हमने कहा कि कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, मैंने कौन सी ऐसी चीज कर दी, सोचें कि नहीं अगर सहाबा की उसके ऊपर पकड़ हो सकती थी कि वो क्यों पहाड़ से नीचे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी क्यों की, तो मेरे से तो गुनाह होते हैं और जानबूझ के भी करते हैं हम, जिनका पता भी होता है, गुनाहों की सजा इस दुनिया में भी मिल जाया करती है इंसान के ऊपर मुसीबतों की शक्ल में। हाँ, मगर जिस चीज की सजा अल्लाह ताला दुनिया में दे दे, आखरत के लिए उसके गुनाह को मिटा देता है अल्लाह ताला। तो कभी भी खैर मुसीबत मांगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो उसके ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह से बदजन हो गए हैं या अल्लाह ताला के साथ कोई ऐसी बात कह रहे हैं मुंह से जो जो जेब नहीं देती। बल्कि इसको यही सोचना चाहिए, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, जैसे असलाफ हमारे दुआएं किया करते थे, अल्लाह ताला हमें मुझे अपनी अतात के साथ इज्जत दे और मुझे अपनी नाफरमानी के साथ जलील ना करना। ये ना हो कि मैं कोई नाफरमानी करूं इसकी वजह से मैं दुनिया में जलील हो जाऊं, क्योंकि जिल्लत भी एक मुसीबत है ना, बेइज्जत हो जाना। अब जैसे किसी का कॉल है कि जब मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी करता हूं तो मुझे पता चल जाता है, इसलिए कि मैं उसके असरात अपनी फैमिली में देखता हूँ, अपनी बीवी में, यानी बीवी को बदतमीजी करे, या बच्चों के अंदर देखता हूँ, या अपने गुलामों के अंदर देखता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो ये सोचते थे कि हमारे साथ अगर कोई हमारी बेइज्जती हुई तो ये भी हमारे कोई गुनाह का नतीजा है, अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो ये भी हमारे कोई गुनाह का नतीजा तो नहीं। इस तरह से वो वॉच करते थे अपने आप को। और हम लोग ये सोचते, बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाए तो सोचते हमने क्या गुनाह ऐसा कर दिया, तौबा की तरफ क्यों नहीं आते। तो कसरत से तौबा इस्तिगफार शुरू कर देनी चाहिए जब भी कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, और इसको माइंड नहीं करना चाहिए अगर कोई याद दिला दे कि हमें तौबा इस्तिगफार करनी। फौरन अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफा फ़ाफ़ अन्ना, हमें सबको माफ कर दे, क्योंकि गुनाहों की वजह से याद रखे मुसीबतें उतरती हैं, और किसी को अल्लाह ताला उसके गुनाहों के बावजूद ना पकड़े। आप कहेंगे फलां है वो इतने ऐसे करते ऐसे करते, उनके पर तो कोई मुसीबत नहीं आती, तो फिरौन पे भी कोई मुसीबत नहीं आई थी जब तक अल्लाह ने उसको पकड़ नहीं लिया। कहा जाता है फिरौन कभी बीमार भी नहीं हुआ था, अल्लाह ताला ढील देता है ऐसे लोगों को, एक ही दफा कयामत के दिन पकड़ेगा। तो ये तो मुसीबतें भी एक रहमत है इंसान के हक में, अगर ये मुसीबत उसको अल्लाह से करीब कर दे, अगर ये मुसीबत उसको तौबा इस्तिगफार की तरफ ले आए, अगर उस मुसीबत की वजह से वो अपने गुनाहों से माफी मांग ले और उन गुनाहों को छोड़ दे, तो वो मुसीबत भी रहमत है उसके लिए। हम मुसीबत को बुरा समझते हैं, लेकिन वही मुसीबत इंसान के हक में बेहतरी हो जाती है, खैर बन जाती है, अगर उस मुसीबत की वजह से इंसान अल्लाह ताला से और कुर्बत का रास्ता इख्तियार करे और दीन में आगे बढ़ जाए और अल्लाह तोबा करना शुरू कर दे, तो मुसीबत भी खैर है और वो नेमत भी इशारा है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। अल्लाह हु अकबर। और अल्लाह ताला बहुत सारी बातें वैसे ही माफ कर देता है। अच्छा, आपको पता है कि एक दो लोगों में जो जुदाई होती है ना, हदीस में आता है, दो लोग जो आपस में मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते थे लेकिन अब उनके अंदर जुदाई हो गई, दो फ्रेंड्स भी हो सकती हैं बड़ी आपस के अंदर एक दूसरे साथ, हो दो बहन भाई भाई भी हो सकते हैं, दो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, कि बड़ी मोहब्बत ही, लोग कहते हैं ना बाद में पता नहीं क्या हुआ ऐसा हो गया, तो उनकी आपस में जुदाई हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यकीनन ये इस वजह से है कि एक ने कोई गुनाह किया जिसकी वजह से उनमें जुदाई होगा। तो इसकी यानी गुनाह की सजा इस तरह से भी मिलती है, गुनाह की वजह से ये भी मुसीबत आ सकती है कि वो जो कोई लव्ड वन है आज जिसके साथ बड़ी मोहब्बत और ऐसे है, और दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, नाराजगियां और झगड़े और ये सब। अल्लाह हु अकबर। तो मुसीबतों से अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन जहदिल बला, अल्लाह मुसीबत की सख्ती से मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, कभी भी मुसीबत ना मांगे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगे और इस्तिग़फ़ार हर वक्त करते रहें, ये नहीं कि कोई मुसीबत आए ही तो हमने करनी है, इस्तिग़फ़ार हर वक्त करते रहें, उसके वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है तो उस वक्त भी इसको दीन से दूरी का जरिया नहीं बननी चाहिए, ये और ही नमाजें छोड़ दी कि मैं तो नाराज़ हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये क्यों मुसीबत लाई, हम क्या ऐसा करते थे, और अब तो हमने ये भी नहीं पढ़ना, और वो कई लोग ऐसे करते हैं उनके ऊपर मुसीबत आती है दीन से और दूर हो जाते, तो इंसान मुसीबत को उस वक्त पे बुरा ना समझे अगर वो आ गई है तो, बल्कि इसमें भी समझे कि अल्लाह ताला की मसलहत और मेरे लिए कोई खैर ही है। और वमा अंतुम बिमुजिज़ीना फिल अर्ध, और अल्लाह को तुम आजिज़ नहीं करने वाले जमीन में, तुम अल्लाह की पकड़ से भाग नहीं सकते, तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, वमा लकुम मिन दून इल्लाही मिन वली वला नसीर, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है ना कोई मददगार है, नसीर जो मुसीबत में काम आए। तो अल्लाह से बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं होगा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया, क्योंकि वो ही तो प्रोटेक्टर है, उसने प्रोटेक्ट ना किया तो और कौन करेगा। वमिन आयातिहिल जवारिल फिल बहरि कल आनाम, और उसकी निशानियों में से तुम्हारी कश्तियां जो चलती हैं माने तो पहाड़ों के समंद्रों में, यानी इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां, इससे आप जहन में लेकर आए जो शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स चलते हैं पहाड़ों की तरह के हैं ना वो, कितनी कितनी मंजिलें उनके अंदर होती हैं, और किस तरह लोग, ऐसे लगता है पूरा पूरा शहर चल रहा है। तो उन वो अल्लाह चलने देता है तो वो चलते हैं, खुद नहीं चल रहे हैं वो, ये बताया गया, ये अल्लाह की निशानी है। हम उनसे मैसमराइज जो हम होते हैं कि वाह ये क्रूज जा रहा है यहाँ से वहां, उसके अंदर ही पता नहीं क्या क्या चीजें, रेस्टोरेंट भी उसके अंदर, उसके अंदर क्लब्स भी हैं, उसके अंदर बड़े बड़े हॉल्स हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर ही उन्होंने बनाई हुई। तो अल्लाह अकबर, ये जो चल रहे हैं समंदरों में ये अल्लाह के इजन से है, यशा युस की निर्री है, अगर अल्लाह चाहे तो थमा दे, साकिन कर दे हवा को, क्योंकि पहले तो वो बादबानों से चलते थे ना शिप्स जो थे, कश्तियां जो थी पहले ऐसे नहीं चलती थी, तो अल्लाह ताला थमा दे हवा को, आज हवाओं से नहीं चल रहे लेकिन अल्लाह चाहे तो उनके इंजन ही खत्म कर दे, फैदल्लना रवा की ताला दाही, तो वो हो जाए हमें हुए ठहरे हुए उसकी पुश्त पर, वो खड़े के खड़े ही रह जाए। इन्ना फी तालिक लायात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसकी इसमें निशानी है हर सबर करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। क्यों सबर और शुक्र करने वाले के लिए क्यों निशानी है और बाकियों के लिए क्यों नहीं? देखें जो सुभान अल्लाह, ये जो कश्तियां चलती हैं इनमें कभी आप गौर करें, इन जहाजों में कभी गौर करें, चल रहा है तो शुक्र करने वाले के लिए एक मौका है, अल्लाह तेरे इज़न से चल रहा है तेरा शुक्र है, और अगर इस डूब गया तो भी सब्र करने वाले के लिए सब्र का मौका है कि अल्लाह ताला तेरी रजा पे राजी है। जिंदगी में भी, जिंदगी की कश्ती भी कभी चलती है और कभी हचकोले खाने लगती है, कभी डूबने लगती है, अल्लाह ताला की मर्जी है ये चलती रहे। जिंदगी में भी तो देखे ना, कभी आंधियां चलती हैं, कभी तूफान आते हैं, हमारी कश्तियां कभी मौजों की जद में होती हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकाल सकता उस वक्त, अल्लाह के सिवा कोई नहीं हटा सकता वहां से, हमें उस मुश्किल से नहीं निजात दे सकता, कभी कश्ती गर्क भी हो जाती है। तो इंसान भी मुसीबतों फितनों में मुब्तिला रहता है, और इन फितनों और मुसीबतों के भंवर से सलामती के साथ सिर्फ अल्लाह निकालता है, तो शुक्र करने वाले के लिए इसमें सबक है, और जब इंसान उस मुसीबत के अंदर मुब्तिला है तो सब्र करने वाले के लिए इसमें सब्र का लेसन है। तो इंसान को क्या चाहिए कि जब उसकी कश्ती स्मूथली सेल कर रही है, जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तब शुक्र को कभी ना छोड़े, जब तूफान आने लगे जिंदगी के अंदर, जब जिंदगी में कश्ती हचकोले खाने लगे, तो सब्र को ना कभी छोड़े, अपने नफ्स पे काबू पाके, सब्र क्या है, बुरे हालात में भी बर्दाश्त करना, अपने नफ्स पे काबू रखना, बेकाबू ना हो जाना, वह वेले ना शुरू कर देना, शिकवे शिकायतें अल्लाह ताला के बारे में ना शुरू कर देना, ये है सब्र करने वाले का हाल। तो सब्र करने वाले के लिए भी खड़े ये जो चलते जो बहरी जहाज हैं इनके अंदर सबक है, और शुक्र करने वाले के लिए भी है। तो हालात जिंदगी में जाहिर है, या तो कभी खुशी होगी या कभी गम होगा, यही दो मौके हैं जिनमें इंसान अपने आप को देखता है कि वो आपे से बाहर होता है, या तो खुशी में या तो गम में, तो खुशी आए तो शुक्र और गम अगर आ जाए तो सबर। अल्लाहु अकबर, ओ यू बिकहुन्न बीमा कसबू व याफू अन कथीर, अगर अल्लाह चाहे, अल्लाहु अकबर, तो हलाक कर दे इनको बवजह उन्होंने जो कमाई की, इनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला चाहे तो इनको हलाक कर दे, जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि ये आसमान भी फट पड़े इंसानों की नाफरमानियों को देख के, ये करीब है कि ये फट जाए, और अल्लाह चाहे तो इनको हलाक कर दे सबको, इनकी कश्तियां डूब जाए, बड़े बड़े जहाज को डबो दे, याफून कथीर। लेकिन अल्लाह ताला ना बहुत सारी इंसानों की जो करतूत है ना, इनको देख के भी इनसे तरगुजर करता है। इंसान समझता है पता नहीं मेरी अब कभी पकड़ होनी ही नहीं, मुझे किसने अब पूछना, अब मैं गेट अवे हो गया तो फिर पता नहीं हमेशा के लिए हो जाऊंगा। सुनिए, अल्लाह ताला जानता भी है देखता भी है, लेकिन वो दरगुजर कर रहा है, ये उसका हिल्म है, वो अल हलीम है, वो देख के सबर करता है। अल्लाह ताला से ज्यादा सबर करने वाला कोई नहीं, वो असबूर है, बहुत ज्यादा सबर करने वाला। हमसे तो सबर होते नहीं है, ये अल्लाह ताला की शान है, ये उसकी सिफत है, इसको भी हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। तो वो बहुत सारे इंसानों के खताएं और उनके गुनाहों को छोड़ देता है, उनकी पर्दापोशी भी कर देता है, किसी के सामने उसको एक्सपोज नहीं करता उस बंदे को। वरना इंसानों के अगर आमाल को एक्सपोज करने लगे तो फिर वो कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। देख, हदीस से हमें पता चलता है कि अगर जिसकी अल्लाह ने दुनिया में पर्दापोशी कर दी, अल्लाह ताला आखरत में भी उसकी पर्दापोशी कर देगा। अल्लाह जालना मिन, अल्लाह हमें दुनिया में भी पर्दापोशी हमारी करना और आखरत में भी। व यालम अल्लदीना युजादिलूना फी आयातिना, और जान लेंगे वो लोग जो जिदाल करते थे, झगड़ते थे हमारी आयतों में, माला हम महीस के, उनके को बचने की जगह नहीं होगी, भागने की जगह नहीं होगी। जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं, बहसें करते हैं, और इस चीज को बगैर इल्म के वो इसके अंदर अपनी राय देते हैं और अपने इसके अंदर मुजादला करते हैं, अल्लाह ताला को उनका पता है, उनको वो जल्दी बता देगा, वो जल्दी वो भी जान लेंगे कि जो वो बहसें करते थे इसका अंजाम क्या है, इसलिए उनके लिए फिर उस दिन भागने की कोई जगह नहीं होगी। अल्लाह ताला की आयात के अंदर झगड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह की जात के बारे में, उसके दीन के बारे में, उसके अहकामात के बारे में बस बहसें करते जाना, एतराजात निकालते जाना, मीन मेखे निकालते जाना। तो देख लें, अल्लाह हु अकबर, कई बहरी जहाज हैं जिनके अंदर बैठे हुए लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, उसकी आयात में बहसें झगड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्लाह ताला उनको पकड़ता नहीं है, और याफ़ान कतीर, उसी को पकड़ ले तो सबको मिलिया मीट कर दे। अगर अल्लाह ताला पकड़ने पे आए तो जिस दिन हम हराम देखें उस दिन हमारी आंखें, अल्लाह माफ करे, अंधी हो जाए, जिस दिन हम हराम चीजों को सुनते हैं और मजे लेते हैं और सर धुनते हैं उस दिन ही कान बहरे हो जाए, लेकिन दरगुजर करता है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दे डाल दे, हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे बगैर हमें सजा दिए हुए, या अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को दिखा के हमें उनके ऊपर तौबा करने की तौफीक इस जिंदगी में अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص